शहरीकरण बहुत जल्दी से बढ़ रहा है और शहरीकरण की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शायद आपको थोड़ी सी आमदनी मिल जाती है, लेकिन जो आपकी जो रहने की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं वो बहुत ही खराब हो जाती है।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द जोश टॉक्स पॉडकास्ट पर, जहां हम भारत के कोने कोने से आए हुए प्रेरणादायक लोगों की कहानियां सुनेंगे। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत नाग और आज हम बात करने जा रहे हैं बीजल ब्रह्मभट्ट जी से, जो महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ काम करती हैं। स्वागत है आपका बीजल जी द जोश टॉक्स पॉडकास्ट पर। हमें बताइए, समाज की सेवा और उसके प्रति काम करने का विचार आपको कब और कैसे आया?
मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपने आसपास अपने घर में जो ये बहनें मेरे आसपास रहती थी तो मैं देखती थी कि वो मेरे घर के अंदर काम करने आती थी, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करती थी। कई बार मैं इन काफ़ी बहनों को देखती थी कि वो रास्ते में से कचरा बिन के एक थैले में डालती थी, तो मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि ये बहनें क्या करती हैं, उनका जीवन कैसा है। तो मैं ये देख रही थी कि मेरे आसपास हर कोई ये चीज़ देखता था लेकिन उसके लिए काम कोई भी नहीं करता था। तो मैं अहमदाबाद गुजरात में पैदा हुई और बचपन तो वैसे ही हंसते खेलते गुजर गया। जो मेरे पिताजी थे वो अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर थे और माताजी थी वो शिक्षिका थी, तो घर में तो एक मध्यम वर्ग का माहौल था। लेकिन अपने घर में भी मैंने देखा था कि मेरी माताजी के शिक्षिका होने के बावजूद उनके जो ट्रेडिशनल रोल थे वो इतने छूटे नहीं थे। मेरे पिताजी हालांकि IIM में थे और सोच उनकी बहुत आगे थी, लेकिन घर के अंदर उसका अमलीकरण बहुत कम था। मतलब माताजी काम करती थी लेकिन उनको वो सब भी करना पड़ता था जो आमतौर पर एक स्त्री करती हैं, और वो कोई छूट नहीं रहा था घर के अंदर या समाज के अंदर उनका जो परिपेक्ष था वो। और पिताजी बहुत, चूंकि वो IIM में थे, वो बहुत बाहर के देशों में जाते थे, तो ये जीन्स पहनना मेरे लिए एक आम बात ऐसे हुई कि मेरे पिताजी बाहर से बड़े कपड़े लाते थे और वहाँ पे भारतीय कपड़े तो मिलते नहीं थे तो वो जीन्स ही लेके आ जाते थे, तो मैंने ऐसे पहनना शुरू किया। तो उस समय कहीं मन में ये नहीं था, क्योंकि IIM के अंदर तो मेरे आसपास ऐसे लोग रह रहे थे, दूसरे प्रोफेसर जो दूसरे राज्यों में से आ रहे थे, और ये आम बात थी। लेकिन जब मैं जीन्स पहन के कॉलेज जाने लगी, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज थी जिसमें 300 स्टूडेंट के सामने सिर्फ 40 लड़कियां थी, तो उनके लिए ये बहुत, लड़कियों एवं लड़कों के लिए बहुत ही बड़ी बात बन गई। और उसको ये कहा जाने लगा कि जैसे मैं जीन्स पहन के जाती हूँ तो मेरा कैरेक्टर लूज है, जिससे मन में एक बहुत बड़ा झटका लगा। मुद्दा ये नहीं था कि मुझे जीन्स पहनना है, मुद्दा ये था कि अगर छोटा सा भी हम बदलाव ला दें और एक बहन होके या एक लड़की होके, तो आपको कितना कुछ समाज से फेस करना पड़ता है। तो मुझे ये बहुत शिकायत होने लगी, मन में ऐसा हुआ होने लगा कि मैं इसके लिए कुछ करूं। मैंने हमेशा, मेरे दिमाग में ये एक सोच आई कि सिर्फ अच्छा बना के खिलाना या स्कूल भेजना वो तो एक रोल है नारी का, लेकिन जब वो कमा भी रही है तो वो क्यों ना ये दिखा पाए अपने बच्चों को कि किस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, किस तरह के बदलाव आ रहे हैं और उसमें उसे कैसे आगे बढ़ना है। वो एक कहीं पे दिमाग में मेरे बहुत ये बात चली, तो उसको लेके फिर हमने महिला हाउसिंग ट्रस्ट में काम करना शुरू किया।
बीजल जी, इस नेक विचार के साथ आपने महिला हाउसिंग ट्रस्ट की स्थापना की, पर इसके बाद आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
1994 में हमने महिला हाउसिंग ट्रस्ट की स्थापना की, और चूंकि मैं सिविल इंजीनियर थी और झुग्गी झोपड़ियों में जाती थी, तो और मैंने देखा कि बहनों का काफ़ी समय पानी लाने में या इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से वो आमदनी उनकी कम हो जाती है, तो मैंने मेरा विषय भी था, तो मैंने उसी से काम करना हमने सोचा कि हम शुरू करेंगे। और उसमें एक बहुत बड़ी महत्व की बात थी कि क्योंकि इस समय इन झुग्गी झोपड़ियों को ये सुविधाओं घर के अंदर देने के लिए सिर्फ सरकार या तो म्युनिसिपैलिटियां काम करती थी, तो और सबसे ज्यादा असर इनकी बहनों पे होती थी, क्योंकि मैं देखती थी कि ये बहनें शौचालय ना होने की वजह से, जब शहर होता है तो उसमें तो खुली जगह बहुत कम होती है, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ता था, तो जब ये बाहर जाती थी तो यहाँ तक कि लोग पथराव करते थे क्योंकि ऐसी कोई प्राइवेट जगह उनको मिलती नहीं थी। कई बार जो कम्युनिटी जो शौचालय होते थे तो वो इतने गंदे रहते थे कि जब बारिश होती थी तो इसमें पानी भर जाता था, तो भरे हुए पानी में अगर बहनें बाहर नहीं जाना जाती थी तो मानसून के सीज़न में उनको वैसे जाना पड़ता था। कई बार कुछ एरिया में झाड़ियों में जब ये जाती थी तो बड़े रेप के भी किस्से बनते थे। तो ये था कि उनको 3 बजे 4 बजे उठ के जाना है, दिन के समय में अगर उनको ये जो ये नेचुरल प्रक्रियाएं हैं तो उनको रोक लेना पड़ता था, तो उनकी वजह से काफ़ी उनको बीमारियां भी हो जाती थी। और जो मान लो कि अगर कोई वृद्ध बहन है या अगर वो प्रेग्नेंट है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती थी। कई बार जो यंग लड़कियां हैं 12-15 साल की, तो उनके ऊपर भी जैसे लड़के वहाँ पे झाड़ियों में छिपे रहते थे जब वे ये शौचालय के लिए जाती थी, तो ये बहुत बहुत दिल्ली में मैंने देखा कि जब कम्युनिटी टॉयलेट्स में बहनें जाती हैं तो भाइयों और बहनों के साथ साथ होते हैं और वो अड्डे होते हैं चरस पीने के या जुगाड़ खेलने के, और फिर बहुत ही शारीरिक शोषण बहनों का होता था। तो इन मुद्दों को लेके काम शुरू किया, और उसमें सबसे पहली बात ये थी कि भाई सरकार के साथ काम करना पड़ेगा, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सरकार के साथ बातचीत करने के लिए म्युनिसिपैलिटी में जाना पड़ेगा। तो बाहर निकलना तो एक वो काम के लिए जाती थी, लेकिन ये कि आप जाओ और किसी के साथ बात करके अपना मुद्दा रखो, और वो भी जो एक सरकारी अधिकारी हो, तो बहुत दिक्कत आती थी। तो उनके घर में से भी कई बार, खासतौर से यूपी बिहार की बहनें या माइनॉरिटी की जो बहनें रहती थी, मुस्लिम बहनें, उनको घर से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा उनको छुप छुपा के वो आती थी धीरे धीरे। पहले तो हमको निकालने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, 5-6-7 बार इन्हीं झुग्गियों में जाओ, बातें करो उनसे, उनसे ये कहो कि हम बहनें ही हैं, तो हम अगर आपको बाहर सरकार के साथ लेके जाएंगे तो आप प्लीज़ आइए, हम भाइयों के साथ बात नहीं करेंगे। जब वो निकलना चाहती थी तो कई बार झारखंड जैसे विस्तारों में ऐसा बोला गया कि जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत है, तो ऐसा बोला गया कि ये तो आपको कहीं ले जाके बेच देंगे। तो उनके घर में से ये बहुत एक बड़ा विरोध आता था, ना सिर्फ मुझे बहुत ही दुख होता है कहने के, ना सिर्फ उनके घर के जो पुरुष सभ्य रहते थे, लेकिन उनके घर की जो दूसरी बहनें थी, जैसे सास हैं या उनकी माएँ हैं, वो भी कई बार तो एक बहन होते हुए भी उनको सपोर्ट नहीं करती थी। तो उसमें सिर्फ एक ही तरीका था कि हम जाते रहें और उनके कुटुंब के साथ, उनके फैमिली के साथ बातें करते रहें और उनको समझाते रहें। 5-6-7 बार ऐसी बातें होने के बाद एक ही झुग्गी के अंदर हम लोग उनको थोड़ा सा हमारे साथ, पहले तो हमारे ऑफिस उनको आने का शुरू करते थे, और वो ये एक सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। कई बहनें ऐसा बोलती थी कि मैं काम के लिए जाके आती हूँ अपने नज़दीक में या अपने किसी संबंधी के साथ, पति के साथ या जेठ के साथ, लेकिन अकेली मैं कभी नहीं निकली, तो बस कैसे पकड़ना वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है, या रिक्शा वाले के साथ बात करके उस ज़माने में आना। तो वो धीरे धीरे पहले हमारी ऑफिस आती थी, वहाँ पे हम उनको तालीम देते थे कि आपकी सरकार क्या है, शहर का विकास कैसे हो रहा है। सरकारी ऑफिसर को हम वहाँ पे बुलाते थे जो उनसे बातचीत करते थे कि कैसे उनको शौचालय किस योजना से मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा, आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन शुरू किया था, तो उसमें कैसे वो जुड़े। तो वो धीरे धीरे, और ये प्रक्रिया लंबी चलती थी, मतलब एक झुग्गी को लेके कम से कम हमको 2-2.5 साल से लेके 5-7 साल तक एक सुविधा लाने में लग जाते थे। तो धीरे धीरे धीरे, और जैसे फिर सुविधा आती थी, एक सुविधा आती थी तो विश्वास बढ़ता था, ये बहनें खुद बाहर नहीं निकलने लगती थी। तो और फिर सरकार से भी कैसे ये सुविधाओं के लिए एप्लीकेशन लिखना, खुद नहीं लिख पाती थी तो उनकी बेटियों या बच्चे जिनको थोड़ा बहुत लिखना आता था उनसे लिखवा के ये लेके जाती थी। और जिसे हम अंग्रेजी में कहते थे कि सरकार के साथ पेशेंस और परसिवियरेंस, मतलब धीरज और छोड़ना नहीं किसी मुद्दे को लिया है। तो फिर ये होता था कि वो उनके घर में तो उनका मान सम्मान बढ़ता ही था क्योंकि उनकी वजह से ये सारी प्रक्रियाएं हुई, उनके समाज में या उनकी जो बस्तियां थी उनमें भी उनका मान बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे हमने इन बहनों को संगठित करके पूरी बस्ती का लीडरशिप लेने के लिए हम 12 से 15 बहनों को ऐसे तैयार करने लगे। और वो ना सिर्फ सरकार से, लेकिन जैसे अहमदाबाद में जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी, तो उनके पास जाके उन्होंने लीगल इलेक्ट्रिसिटी की मांग रखी। सबके पास इलीगल था इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन उनको ये चाहिए था कि हम कैसे शहर के अंदर हम लीगल बने, हम जो दूसरे मध्यम वर्गीय शहरी हैं उनके जैसा स्टेटस हमारा हो, हमारे पास कायदे की सारी सुविधा हो। तो वो एक प्रक्रिया उन्होंने अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ शुरू की। और इन हर एक चीज़ों में खासतौर से ये जो सुविधाएँ हैं वो मुफ्त नहीं मिलती हैं, उनमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पैसों से उनको देना पड़ता था। जैसे उस समय शौचालय के लिए उनको जो भी कॉस्ट होता था उसका 1/3 उनको देना पड़ता था अपने घरों में से निकाल के। तो उनके लिए उन्होंने बैंक खाते खुलवाए, एक 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 करके उनमें अपनी छोटी सी आमदनी में से पैसे काट के उन्होंने जमा करवाए और फिर सरकार में उसको हम लोगों के साथ रह के जमा करवाए और घर पे उनको ये सुविधाएं मिली। मतलब जैसे आपके और मेरे घर में पानी का नल है या घर के अंदर, उस समय तो स्वच्छ भारत मिशन की बात कहीं नहीं थी। स्वच्छ भारत मिशन तो बाद में लगभग 2014 से ये आया, तो जब आया तो वो एक मुहिम बन गया, लेकिन उससे पहले इन बहनों ने लीडरशिप ले लेके अपनी बस्तियों में अपनी शहरों में ऑलरेडी ये विकास का कार्य शुरू कर दिया था। तो कितनी ही बस्तियां हैं, करीब मैं कहूँगी आज 1000 से ज़्यादा बस्तियां हैं 9 राज्यों में भारत के अंदर जो महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ काम कर रही हैं, उनके घरों में नल हैं, शौचालय है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनके नाम पे उनके घर हो गए हैं। सरकार का हाउसिंग फॉर ऑल मिशन आया तो इनके साथ बहनों ने बड़ी मुहिम छेड़ी। और धीरे धीरे ये हुआ कि वो मोबाइल से GPS के अपनी बस्तियों के लोकेशन लेना सीख गई, अपने ही नक्शे बनाने लगी अपने मोबाइल से, और उनकी बस्तियां कैसी हैं ये सब डेटा ले जाके वो सरकार में देने लगी। तो शहर स्तर पे ये बहनें धीरे धीरे नीति बदलाव करने लगी अपने बस्तियों के तरफी।
जो आप अभी सुन रहे हैं, अगर आपको पसंद आया हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो फॉलो बटन और ठीक उसके बगल में बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने महिला हाउसिंग ट्रस्ट की मदद से कई महिलाओं के जीवन को बेहतर किया और निखारा, पर हमें बताइए इन महिलाओं से अब आपकी क्या उम्मीदें हैं?
अभी जैसे भाली का मुद्दा है कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की बहुत बात हो रही है, जो अभी का मुद्दा है, और इनफैक्ट ये इंटरजेनरेशनल है। तो आज ये उनको समझ में आएगा तो वो अपने बच्चों को, जिनको सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन की बात सहन करनी पड़ेगी, तो ये बहनों ने जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा भी समझा जो शायद आजकल के मध्यम वर्ग के काफ़ी लोग नहीं समझते, और उनकी वजह से उनके जीवन कैसे बदलेंगे कि गर्मी ज़्यादा बहुत पड़ने वाली है या बहुत ज़्यादा बाढ़ आने वाली है शहरों में, और डेंगू वगैरह बहुत बढ़ने वाले हैं क्योंकि बाढ़ की वजह से मच्छर वगैरह बढ़ेंगे, पानी बहुत ही कम होने वाला है, जिसके जो तो एक बड़ा मुद्दा अपनी सरकार ने ध्यान में लिया है और उसके लिए जल शक्ति और हर घर नल का मिशन भी शुरू किया है। तो इन जो ये जो मिशंस हैं सरकार के, उसमें ये आगेवानी लेने लगी और जलवायु परिवर्तन के लिए वो शहरों का साथ मिलके, अपने शहरों के साथ मिलके हीट पे कैसे काम किया जाए, हीट एक्शन प्लान बनाने लगी, मॉनसून एक्शन प्लान बनाने लगी। तो बात यह है कि ना सिर्फ घर से बाहर निकली, उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी, उन्होंने आजकल का जो रेलेवेंट जो मुद्दे हैं उसके बारे में वैज्ञानिक समझ पाई और एक टेबल पे बैठ के वो आज वो सरकार और समाज के साथ, समाज के अन्य जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके साथ रह के उन्होंने ये मुहिम छेड़ी हुई है और ये आगेवानी ली हुई है। तो लगभग 17 से 20 लाख लोगों के जीवन पे असर पड़ा है, वो अपने शहर की चैंपियंस हैं और यहाँ तक कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये बहनें अब काम कर रही हैं। यहाँ तक कि महिला हाउसिंग ट्रस्ट कभी अगर उनके विस्तारों में नहीं रहेगा तो भी उनकी जो नेतागिरी के गुण हैं और उनकी जो स्किल्स हैं वो इस तरीके से बढ़ी हुई हैं कि ये जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है वो रुकेगी नहीं। आज की तारीख में महिला हाउसिंग ट्रस्ट करीब भारत के 36 शहरों में ना सिर्फ गटर पानी आवास का काम कर रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेके शहर का विकास किस तरीके से हो, जिसमें ये बहनें जो गरीब है, श्रमजीवी हैं, वो भागीदार बने, वो सिर्फ उस सुधार को पाए नहीं, वो सुधार लाने में भागीदार बने, उसकी ओर हमने काम किया है। सब करीब करीब 17 से 20 लाख लोगों तक हम आज पहुंचे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि जो अपना देश है भारत, उसमें शहरीकरण बहुत जल्दी से बढ़ रहा है और शहरीकरण की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शायद आपको थोड़ी सी आमदनी मिल जाती है लेकिन जो आपकी जो रहने की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। आपके पास शौचालय नहीं रहता है, छोटी छोटी 12 फुट 10x12 फुट के एक कमरे में 25 लोग रहते हैं और बड़ी गर्मियाँ लगती हैं, हमेशा बाढ़ आपके घरों में सबसे पहले आती है इन झुग्गी झोपड़ियों में। तो और बड़े शहरों में तो ये होने लगा है, जो बहुत बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली बम्बई, लेकिन भारत के अंदर 350 से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है अभी भी। यानी शहरीकरण कैसे ऐसा हो जहाँ पे आमदनी तो बढ़ती ही है लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छा हो, जलवायु परिवर्तन की असरें बहुत ही कम हो, तो वो हमने एक मुहिम इन बहनों के साथ छेड़ी है। तो जो जोश टॉक्स है उसने सिटी चैंपियंस की एक मुहिम शुरू की है। तो मैं समझती हूँ कि ये हैं जो सिटी चैंपियंस है, ये बहनों जिनके हाथ में शक्ति है और सिर्फ ये बहनें अकेली नहीं कर पाएंगी, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जब एक साथ में जुड़ेगी तो ये बदलाव धीरे धीरे आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि सिटी चैंपियंस कैंपेन के द्वारा हम ऐसी बहनों को और ऐसी संस्थाओं को जोड़े जो शहर के विकास को गरीब तरफी करें, तब ये बात बनेगी। तो उसके लिए मैं जोश टॉक्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सिटी चैंपियंस जो अवार्ड है वो हमारी जैसी जो संस्थाएं हैं उनको सम्मानित करने भी आगे जा रहा है, तो उससे हमारी बहनें और हमारे जैसी संस्थाओं का बहुत ही मनोबल बढ़ने वाला है। तो मैं एक बार फिर से इसके लिए जोश टॉक्स को अभिनंदन देती हूँ। तो मेरे जीवन से मैंने ये सीखा कि समाज के निर्माण के लिए महिलाएं बहुत ही ज़रूरी हैं। वो अपने घर से शुरू करती हैं जहाँ अपने, मुझे लगता है कि जब एक महिला माँ होती है तो इस देश में, इस अपने पितृसत्ताक समाज में माँ के रूप में उसके पास बहुत पावर होता है। जो अपने जो पुरुष हैं घर में या अपने जो छोटे बच्चे हैं, जो बेटे हैं, उनको ये सिखाएं कि वो महिलाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें और आगे बढ़ाएं। तो ये अगर ये अपने घर से शुरू होता है तो वो फिर समाज में जाता है और समाज से फिर वो देश के अच्छे निर्माण की ओर बढ़ता है, जिसमें 50% महिलाएं हैं। तो उनको आगे बढ़ाए बिना आप एक विकसित देश की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये मुहिम जो मैंने एक भले एक जीन्स से शुरू की थी, लेकिन आज ये एक बहुत सारे महिलाओं में बदलाव लाने का कारण बनी है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसके साथ जुड़े और हमारे देश में, हमारे शहरों में ये बहुत बड़ा बदलाव।
तो दोस्तों, ये थी बीजल ब्रह्मबच्ची, जिन्होंने महिलाओं और ग्रामीणों के उज्ज्वल भविष्य के लिए गाँव में रहकर महिलाओं को हाइजीन और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का कार्य किया। आज के पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने जोश को बनाए रखने के लिए फॉलो बटन और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज का एपिसोड सुनकर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें, जिन्हें शायद अभी जोश की जरूरत हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड ने आपको एक जोश भरा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया होगा। मैं सिद्धांत नाग आपसे फिर मिलूंगा द जोश टॉक्स पॉडकास्ट के अगले एपिसोड पर।